उसी की बैठक मुझे समस्त सारा भाग प्रथम श्लोक सत्तर साल भी नहीं जो कहती है ओंकार से ये सब वेद निकले हैं, ये ब्रह्मस्वरूप उन्हीं से ये गायत्री निकली, उनकी व्याख्या के रूप में शुद्ध उसका वेद व्यास जी ने स्वयं वेदांत इत्यादि का ये अर्थ स्वरूप श्रीमद् भागवत का उसका भी सार बताया श्रीमद् भागवत। हमने पहले का दर्द जन्मादर्श जतः बहुत से अर्थ बदलाए हमारे जी गोस्वामी ने, हमारे सनातन गोस्वामी को जी बात पूज्य बात जी गोस्वामी और उन्हीं का प्रसाद महामहा प्रसाद ग्रहण करके हमारे श्री विश्वनाथ के वर्ग था बहुत कहती है जिसमें प्रधान जन्मादर्श जतः है जन्म आदि व्यस्त जिससे ये जन्म हुआ उसको पहले तक बदला है कृष्ण रत्न और सत्यम परम भी वही वो कृष्ण ही सत्यम परम परम सत्यम जीव है वो सत्य से ही होता है। दूसरा एक प्रधान अर्थ उसका ये निकाल है और उसी संसार में सारी उसी श्लोक के सारे जितने हैं चरण उनको उसी में लगाए एक अन्य व्यतिरिक रूप में उन्हीं से ये सब कुछ निकले हैं वो स्वराज तेरे ब्रह्म परिवार जब आज पड़े वो यंत्र जब शुरू हुए ते जो बाल ग्राम जब तुम में हो तिशर हो अंकुशा धाम नाश में निरस्त होकर सत्यम पर एक एक शब्द का उसी के ऊपर में देखो उस कृष्ण को वही कृष्ण ही सत्यम परम ही उस कृष्ण मान उनके लोग के साथ गुरु वृंदावन के साथ फिर दूसरा आरोप कृष्ण ही नहीं राधा कृष्ण जुगल सत्यम परम और उसने बदला तेज तेजो बाल दान उसने तेज शब्द की व्याख्या की ऊर्जा ऊर्जा किसकी भर्गो देवस्य देवस्य भर्ग कृष्ण देवस्य भर्ग तेज शक्ति ऊर्जा ये दुनिया ऊर्जा है इस चीज को ऊर्जा के बिना शक्ति के बिना शक्तिमान बढ़ नहीं सकती इसलिए शक्ति के साथ में श्रीमती राधिका के साथ में सत्यम परम और उसी के अर्थ में जितने एक एक शब्द का उसी में उसी के अनुरूप में अलग अलग अर्थ निकाल सबसे विचित्र बात है उन्होंने सत्यम परम धीम नहीं में श्रीमती राधिका जी की विशेष रूप में यह श्लोक श्रीमती राधिका के लिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है प्रेम कदल्यई प्रयोजन यहां पर केवल या भक्तिया पहले मैंने बदलाया था कभी आज कभी बदलाया केवल या भक्त्या यही केवल भक्त्या ही लीला हरी लीला तथा प्राता प्राता मने समूह ये हरि लीला तथा प्राता एव अमृत यही अमृत बल्कि अमृत से तुलना देना उस कथा की महिमा को कम कर देना कहां भक्ति रूपी के मान ले कहां कृष्ण के हृदय में विराजमान रहने वाला जग शुद्ध स्पर्क के अंतर्गत में ये जो लाली और संबित का और कहां श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति जो संबित और लाली का जो सार है उस प्रेम की तुलना पहले अमृत से संभव है इसे कभी भी संभव जगत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इसलिए दिखलाने के लिए आशा करता यथार्थ में इसका कोई उदाहरण नहीं है साहसिंद्र आज भी लिखा है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये हरि कथा ही एकमात्र अमृत है, ये हरिलीला कथा ही प्रयोजन, यही कई बात है। ये तो अमृत हुआ किंतु उसका उसकी उसके अनुभव क्या है? आनंद जिसमें प्रमत्त हो गए और शांत हो मनमत मनमथ रास के बाद रास के बीच में जब कृष्ण का ध्यान होकर मिले सब प्रकार की गोपियां तरह तरह की गोपियां उनके सामने में खड़ी हो गई और किस किस तरह से अपने नेत्रों से अपने हाथों से अपने कंधों को उनका हाथ देकर के अभिवादन करते उसमें श्रीमती राधिका जी की जो भाव इसीलिए मनमत मनमत यही प्रेम जो राधिका जी का कृष्ण के प्रति यही प्रेम केवल केवल माने यहां पर शुद्ध ऐसे शुद्ध अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान का पाप जनातम आंकुल्य कृष्णानुशन यही केवल था जिसमें संसारित लोक के सुख इत्यादि की तो बात ही क्या है, दुख को दूर करने की बात थी तो आत्यंतिक दुख निपटति रहेगी इसको भी छोड़ दो बहुत दूर नीचे की बात है। इससे मैं बहुत ऊपर स्वर्ग इत्यादि को भी छोड़ दो, स्वर्ग से ऊपर मोक्षामृत जो कहलाता है इसको भी दूर से प्रत्याग किसी प्रकार की लौकिक पारलौकिक किसी प्रकार के सुख की अभिलाषा न है। ये वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं इनके अंदर में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति स्वाभाविक यही प्रेम जीव मात्र के लिए श्रीमद् भागवत उसी को देने के लिए कृष्ण ही भागवत के रूप में यहां पर अवगत और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित तीर्था में जहां के हजारों तरह के ज्ञानी योगी कर्मी इत्यादि सब वहां पर बैठे हैं और उसके बीच में ये सुखदेव गोस्वामी देना चाहते हैं वो ही ब्रज का प्रेम कौन सा विशेष करके गोपियों का भाव ये बनता है बृहद पर्वता केवल मात्र देने के लिए। परीक्षित महाराज जी ने लज्ज होकर के जिसमें शरीर को छोड़कर शरीर को छोड़कर के मत समझना कि ये शरीर का त्याग कर दिया अलक्षित रूप में माया का एक शरीर जो मैं वहां पर रख दिया और उस शरीर ही वो लोग वृंदावन में गए हैं और गोपियों का भाव आने के खुद सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका भी रख और अपने भैया को कह रहे हैं भैया देख अब लज्जा की कोई जरूरत नहीं तुमको परम पुरुष मत मानना नहीं तो ऐश्वर्य से तुम्हारा वो जो प्रेम है वो बच जाएगा ऐश्वर्य जैसी की प्रेमे नहीं होती शक्ति नहीं होती। इसलिए ये ऐश्वर्य को भाव कर छोड़ करके कृष्ण को अपना गोपी जन बल्लभ मतबल्लभ इस रूप में तुम समझो यदि यह भाव आ जाएगा तो तुम ब्रज में कृष्ण को भागवत श्रीमद भागवत का यह प्रयोग है बृहद भगवत में भागवत को और भी भागवत की महिमा से और भी गौरवान्वित किया है कृष्ण नहीं तो लोग नहीं समझते जो भागवत क्या है परीक्षित महाराज जी क्या है उसके सुनने का आपको क्या होता है ये नहीं हम लोग इसलिए हरि लीला कथा प्रातः भगवान ने जो जो लीलाएं कही उनकी लीलाओं का समूह रास लीला में एकत्र सबको पूरी कूद करके ये वहां हमारे गुरु महाराज ने दामोदर लीला के श्लोक की व्याख्या में रास लीला को सब लीला सुनाई और उसी में समस्त लीलाओं को पूरी कूद करके दिखलाया है सनातन गोस्वामी ने उसमें प्रेम का जैसा कुछ बात दिखलाया गया और कहीं भी तो किसी भी शास्त्र में ये इसलिए हरिलीला तथा भ्राता कृष्ण जाने के बाद में प्रकट होने के बाद में अपनी लीला कथाओं के अमृत समूह को जो सुखदेव गोस्वामी को कहा जिन तुम इसका परिवेशन करना, सुखदेव गोस्वामी इसके वक्ता मतलब मूल नहीं है, इसके अनंत काल पहले से ये श्रीमद्भागवत चलता रहा था जो कि अधिकारियों के द्वारा जगत में ये परिवेशन होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को सुख को कृष्ण पहले से रख गए इस सबका भी विवरण मुझे बताया कि ये जो लीलाएं हैं यही अमृत स्वरूप हैं, इसको देने के लिए आए हैं। किनको? हम लोग जिनका जिन्हें थोड़ी सी भी रुचि है, जिन्होंने गुरुवारों से अपनी दीक्षा लिया, यथार्थ वास्तविक दीक्षा है, उन्होंने कृष्ण सेवा की वासना रूप कृष्ण प्रेम का बीज बो दिया। बहुत से लोग समझते हैं जैसे श्रद्धा उसका नहीं, कृष्ण सेवा की वासना जो है यही भक्ति का यही प्रेम पहले श्रद्धा के रूप में प्रस्तुत होता है। उसके दो पत्ते बतलाए गए कृष्णग्नि और सुवर्णा। नीचे का पत्ता पत्ता जैसे अभी कोमल है ना कली के रूप में तो प्रस्फुटित होता है, तो अभी ऊपर का भाग दिखलाई दे रहा है कौन वैदिक के रूप में, और जब ही वो पत्ता सूखता जाएगा तो क्या होगा कोमल स्निग्ध निकल जाएगा, वो नीचे हो जाएगा पीछे की नीचे की तरफ में और ऊपर कौन सा हो जाएगा प्रधानता हो जाएगी फिर दादा का श्रीमद भागवत का चैतन्य चैतन्य पढ़ने सुनने का यह किसी प्रकार से इसमें ऊंची हो जाएगा जीवन सार्थक। इसलिए सुनाने के पहले प्रथम स्कंद से मैं सब कुछ भागवत का जितनी लीलाएं हैं रासलीला तक द्वारका की ले जाए सब उसी के अंदर में भरने के बाद में क्या किया इसके अधिकारी कैसे होंगे? यदि अधिकारी बनना चाहते हो सुनने का तो नारद ने नारद गोस्वामी ने व्यासदेव को जो शिक्षा दी उनका सबसे पहले उसी में व्यक्ति ने अपने गुरु को कैसा सम्मान दिया किस प्रकार से अपने रोगी बने मुझे बड़ी अशांति लग रही है आपको एक दवा दें बतलाएंगे रोग क्या है रोग का निदान कीजिए कजे रोग को मैं देख रहा हूं तुमने लीला कथाएं कृष्ण की नहीं पढ़ रही कृष्ण स्वयं भगवान ने इसको नहीं तत्वया तुमने अच्छी तरह से लिखो कृष्णस्तु भगवान तुमने ध्रुव प्रहलाद चरित्र इत्यादि सर्वत्र तुमने लिखे आपने वेदों का विभाग किया ब्रह्मसूत्र का संकलन किया महाभारत जैसे ग्रंथ की जिसमें स्त्री शूद्र सभी लोगों का अधिकार है आपने प्रणयन किया प्रकाशित किया 16 पुराण 18 शाखा पुराण 18 से 54 पुराणों को आपने प्रकाशित किया महाराष्ट्र कर आपने गीता का भी प्रकाश किया किंतु फिर भी आपको शांति नहीं आपका चित्त क्षुब्ध है क्यों इसलिए क्षुब्ध आपने कृष्ण का शुद्ध जो लीलाएं हैं उनकी शुद्ध लीलाएं हैं इसका आपने स्मरण नहीं किया आपने ये दिखलाया नहीं कि ब्रज के परिकर लोग कृष्ण को कैसा स्नेह करते हैं विशेष करके शांतरस का ब्रज में प्रवेश नहीं पर मंद गति से अलक्षित रूप में निवास करता है यदि कहे तो ब्रजन वो है ही नहीं है तो अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं किंतु अलक्षित रूप में जमुना के उपकूलों में वो वहां के रेतियों के अंदर में दबा हुआ है जहां पर कृष्ण राष्ट्र का उनके चरण कुंज के अंदर में उनके दबा हुआ है, प्रकाश नहीं है, शांत है। जितने भी पेड़ पौधे गायों को शांत रस पाला जाता है किंतु इसमें से कोई भी शांत रस नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जयपुर इत्यादि में भी ऐसा नहीं किया। यहां की गाय कौन है? बासल रस से भरी हुई। बछड़े कैसे हैं? शक्कर रस से भरी हुई। पेड़ पौधे कैसे हैं? कृष्ण के फूलों के ऊपर में वर्षा कर रहे हैं, मधु धारा दे रहे हैं और उनसे भरे भरे होकर के उनके चरणों में पुष्प की अंजलि दे रहे हैं और कभी उनका आलिंगन करते हैं, उनको देकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इनमें कोई सखा है? लताएं क्या है? वृंदावन ऊपर में उठिए सखा लो सखरस। वृंदावन में शुद्ध दास्य भी नहीं है। कैसा दास्य है? भागवत में इसको पढ़ने से ही आपको समझेंगे। नंद बाबा के घर में जो दास हैं कृष्ण की गोदी में लेकर के उनको दूल्हा करते हैं। हनुमान ऐसा कर सकते हैं? ऐसा संभव है। इसलिए वो या तो वात्सल्य और सख्य मिश्रित रहता है। सखा कैसे हैं? प्रिय धर्म सखा लोग हैं। गोपियां कैसी हैं? इनकी तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग इसी को अधिकार देने के लिए श्रीमद्भागवत अभी इसकी व्याख्या यदि पढ़नी है अच्छी तरह से समझना है तो चैतन्य चेतना मत पढ़ना पड़ेगा। बिना चैतन्य चेतना मत पढ़ेंगे इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा तो यह और अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए वहां वहां सौभाग्यवान कोई जीव हो, पूर्व जन्म की भी ऐसी स्वीकृति हो, संस्कार ऐसा हो, इस जन्म का संस्कार, तो उनको शांति के ग्रंथों को मैं समझता हूं। उनको शांति के अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर के ग्रंथ के माध्यम से तब उनको गोस्वामी को लोग समझे और तब फिर इसमें प्रवेश करते तब कुछ कुछ समझ में आएगा। इसी से समझो अहम वेदमी सुख को व्यक्ति प्या को व्यक्ति न व्यक्ति बात भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या। बुद्धा बुद्धि से टीका से पढ़ने से अधिक सुनने से भी कंठस्थ करने से भी नहीं समझ में आएगा। कौन कह रहा है इसको? अहम वेदमी सुख को व्यक्ति प्या को व्यक्ति न व्यक्ति बात पर अशीक भाव कृष्ण के अभिन्न हृदय पर साधु वैष्णव वैष्णव आराम कथा ये शंभु जी का है। दूसरा शादी इसलिए ये साक्षात रसिक भाव के भक्त हैं। कृष्ण से कई कई अभिन्न से जुड़े दिखते हैं किसी किसी विषय में। इस विषय में सेवक के रूप और सुखदेव कुछ कुछ जानते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि राजा जी के सुख और जानता है कौन? प्यास जी ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं हमको पता नहीं। ये कहना कृष्ण के लिए भी हो गया या समझो मुक्त प्रवर व्यक्ति से कृष्ण भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये गुरु जी। हां जान सकते हैं कब? जब विशाखा से भेंट होगी, रायानंद से भेंट होगी गोदावरी के तट पर और उनको मंत्र की दीक्षा देने कहीं तब जाना चाहिए उनको भी सुनकर तब जगत अपने इस चीज को हमारा पिक्चर में किरात हो। इसलिए चैतन्य चरण का अनुभव पढ़ना गोस्वामी की दया में उस परंपरा में आकर के धारा में अब तक जो धारा प्रवाहित हो रही है कहां से? कृष्ण से स्वयं ब्रह्मा नारद इत्यादि के माध्यम से अब तक जो ये हम लोगों की ब्रह्म मात्र गौरी वैष्णव संप्रदाय की जो धारा आ रही है
उसमें यदि कोई एक थोड़ा कभी गुटकी करे या कोई वैष्णव उसका पानी लेकर के थोड़ा सा छींटा दे दे तो उनके भाव
अभी नाग ऋषि का उपाख्यान चला सुखदेव
आपने कृष्ण लीला जब तक तो कोई पढ़ने ही नहीं किया आपने सुखरूप में कभी लिखा ही नहीं ये कृष्ण को भगवान सो अभी तो भगवान का ही निर्णय नहीं हुआ और आपने जो भगवत्ता का निर्णय किया है वो भी ठीक ढंग से नहीं हुआ मेरे समझ पूर्णांग रूप में नहीं हुआ आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं उसमें भगवत्ता का निर्णय आपने एज पर जैसे किया एज पर जो प्रधान जिसका जितना ही एज पर जाए वही भगवान है किंतु नर लीला कृष्ण का अपना और उनकी लीलाएं उनका
भगवत्ता का साथ क्या मैंने बताया चैतन्य चैतामृत में
भगवत्ता का साथ बोला महागुरुज कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं तो आप अभी तक तो यही तो आपने सब लिखा नारायण भगवत्ता भगवत्ता के साथ राम लीला का कृष्ण लीला का भी वर्णन किया किंतु आपने थोड़ा सा कुछ शंका खड़ी कर दी आपने कहा दिया आप श्वेत और कृष्ण केश के अवतार हैं किन के
जो नारायण है गर्भदशाई और बूढ़े होने जा रहे हैं
उनके केश कैसे हो गए हैं श्वेत और श्याम अभी प्रौढ़ होता है कभी तो होता है तो आपने उनको भी बना दिया प्रौढ़ बना दिया अरे भगवान का तो सब समय किसी भी रूप में उनकी सूर होता है उनकी न तो दाढ़ी होती है न मोक्ष होती है न वो गुरु होते हैं न कोई आज तक तो भगवत अवतार का कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया आपने उसमें शंका लगा दी जो उसके अवतार है कहीं का दिया आप नर नारायण के अवतार हैं कृष्ण कई कुछ करें कुछ कर दिया कभी कभी तो शंकर के तत्वों को आपने इस प्रकार से वर्णन किया कि मानो शंकर ही सबके कभी समस्त लोगों का तेज भी करके दुर्गा जी हो गई अब यही सबकी जननी हो गई ऐसा भी अरे स्पष्ट करके लोगों के सामने इस बात को रखिए कृष्ण तू भगवान स्वयं और उनके लीलाओं का वर्णन प्यार जी चले गए शांत स्थान में और बोले क्या भक्ति युगे नमनसार समर्पण की देव मले अपश्यत को संपूर्ण मायांत जगा पास है पुरुष को उन्होंने परिपूर्ण रूप में देखा पर पुरुष को आंशिक रूप में नहीं आंशिक रूप में कौन है राम आदि मूर्ति शुकला अधिष्ठान प्रोतिना अवतार किंतु भुवनेश किंतु कृष्ण सर्व अगर पूर्ण परमात्मा जो गोविंद आदि पुरुषम रामादि मूर्ति सु कला भी मेरे दृष्ट राम इत्यादि ये सब कला माने अंश के अंश कला कोई कोई अंश के अंश के अंश के कला के कला भी कला है शेष जी वैसे ही है इसी तरह से जैसे एक चंद्र के 16 कलाएं होती हैं उसी प्रकार से एक ही परम तत्व है बदंति तत्व विदस तत्व ज्ञान इसका भी हुआ है बदंति तत्व विदस तत्व ज्ञान अभ्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द दे इसमें ब्रह्म आंशिक तत्व है कौन केवल मात्र सच्चिदानंद में से केवल चित्त के विद्युत प्रतिफलन आंशिक रूप में कौन ब्रह्म शुद्ध चित्त भी नहीं विद्युत प्रतिफलन है उसकी और परमात्मा जो है उनके अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश के अंश हैं यह है साक्षी विष्णु के ये सत और चित्त के आंशिक अंश है इनमें सत्व है रूप भी है इसमें कुछ गुण भी है चिन्मय है ये बात तो ठीक है, किंतु आनंद तिरोहित है। इसलिए बताया गया हमारे गुरु जी का एक उदाहरण, उसमें परम परमात्मा परम ब्रह्म ये कौन है? भगवान है। ये भगवान कौन है? नारायण इत्यादि भगवान है, राम कौन है? इसलिए व्यास जी जब ने परिपूर्ण पुरुष को देखा तो किस रूप में देखा? स्वयं जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन नंद नंदन राधानाथ, केवल ऐसे नहीं राजबिहारी के रूप में देखा, और समस्त परिकरों के साथ में कृष्ण के जितने भी परिकर समस्त परिकरों के साथ परिपूर्णतम रूप में समस्त रसों से परिपूर्ण देखा उनको, जैसे मथुरा में मथुरा वाली रमणियों ने कृष्ण को किस रूप में देखा, वहां पर बदलाया गया कंस के सभा में जबकि रंगेश्वर में पहुंचे तो 12 प्रकार के लोगों ने 12 प्रकार से कृष्ण को, एक ही कृष्ण को देखा। जब मथुरा में ही ऐसी बात है तो वृंदावन में ना जिन्हें यहां पर जो तुम वंशीगढ़ है और राधापुर में जिन्हें क्यों कैसे तत्व प्रकाश, यहां पर गोपियां कृष्ण के विरह में बिलबिला रहे और राधा कुंड में कृष्ण ही बिलबिला रहे। राधा चिंता निवेशेना जैसे कार्तिक गोपिका श्री कृष्ण चरण वंदे राधा निमित विग्रह, ये भागवत का संदेश है। इसके बाद उन्होंने देखा और तब जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया। किस लिए? जैसे आवाज सूर्यमाणा कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते पुरुष शोक मोह भय, ये शोक मोह भयापह जगत के शोक को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए। किंतु मेरे समझ से कुछ अर्थ जिसका है परक्षवादों ऋषय और परोक्ष बाद मम प्रिय, इसे कुछ और ही इंगित देते हैं। कौन सा शोक, कौन सा मोह, कौन सा भय, इसको दूर करने के लिए जो ब्रजवासी हैं कृष्ण के विरह में जो अत्यंत दुखी है शोकान विरह शक्ति में जो चल रहे हैं, वैसे कृष्ण फिर चले न जाए ये सब का दूर करने के लिए, और गौण के रूप में जगत का शोक मोह काम क्रोध राग मद मोह लोभ इत्यादि अनर्थ अपराध ये सब को दूर करने के लिए सुकृति जन्म जो दोष अनर्थ है उसको दुष्कृति जन्म और सब जो दोष हैं दूर करके शुद्ध नाम में शुद्ध भगवत कथा में रुचि देने वाले और धीरे धीरे क्रमश रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम। प्रेम इस शरीर में इस साधन में नहीं होगा जितना भी दूर करें प्रकट ब्रज में जो इस तरह से शोक मोह भया भाव श्रीमद् भागवत का मूल सुनकर के देख करके बड़े विस्मित हुए और सोचा कि इस जगत में किसको पढ़ाए हैं। देखा जो जगत में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो इसके लिए योग्य हो, हजार वर्ष तक चिंतन करते रहे। प्रभु ने देखा इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए तो सुखदेव गोस्वामी को पुत्र के रूप में और सब इस दृश्य उनको आकर्षित किया। जन्म लेते ही वो चले गए पर में, जब चले गए तो उनको कैसे बुलाएं? सुनते हैं बहेलियों के माध्यम से श्लोक भेजवाए मंत्र के लिए परमा पीड़म नटवर बहु, और दूसरे दिन भेजवाया और सुनते हैं कि एक और श्लोक भी अंत में भेजा है, निवृत्त तरसई उपगी यमाना बहुत सदाश्रत मनो की आना कह उत्तम श्लोक नाम बाधा विरजित बिना पशुना। देखा भाई मैं अपनी आत्मा को हनन करने वाला तो नहीं हो रहा हूं जो इस कथा से वंचित हूं। निवृत्त पक्ष में यह बात तो ठीक है किंतु भागवत ये जो कथाएं मैंने तो सुनी नहीं, हमारा जीवन बेकार का जाएगा। मैं आत्मघाती हो जाऊंगा यदि इस कथाओं को नहीं सुनू दौड़ करके है। इसे आपने किस ग्रंथ में किसको पढ़ने किया इसमें तो बैठो कहीं बीच में भाग मत जाना और सुनो। पर वो जो निवृत्त परक सुखदेव गोस्वामी थे जो बाहरी रूप में ऐसा दिखते हैं वो क्या श्लोक है ऐसा हमने पर भी श्रीमद भागवत का अध्ययन कराया नहीं मैं निर्विशेष बात की याद कर निर्गुण तो परिनिष्ठित परिनिष्ठित और निर्गुण्य है। मैं निर्गुण्य ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, मैं आत्मा राम आत्म काम था। किंतु भगवान की लीला कथाओं को सुन करके हमारे अंदर में इनको अध्ययन करने की लालसा आ गई और इनको अपने हृदय में इसलिए आपके पास में आया। तब उन्होंने विकास सुनाया और तब भी उन्होंने उन्होंने बताया कि प्रकाश से नारद ऋषि चातुर्मास्य में अपने गुरु वर्ग के आने पर उनके चरण की धूली चरण का जल और मुखांग मुखांग दो प्रकार का उच्छिष्ट प्रसाद और उच्छिष्ट हरिकथा हरिकथा सबसे बलवान है। इस प्रकार का थोड़ा सा भी सेवन करने से किस प्रकार से मनुष्य का श्रीमद भागवत प्रवेश हो सकता है अन्नदान नहीं होता। इसलिए ऐसे वैष्णव का पाना भी बड़ा दुर्लभ है, भगवान का मिलना सहज है यदि ऐसे वैष्णव मिल जाए ऐसे राष्ट्र पाना भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं यदि ऐसे मिल जाए मिलना कठिन है ये ऐसे लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पहले ही ये सब भगवान का मिलना सहज है बड़ा कठिन है इन महापुरुषों का। उन्होंने जब तक कामना वासना रहेगी भाई भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें यदि गुरु सदगुरु मिल जाए नारद जी जैसा जैसे उनको मिल गए थोड़ा सा निर्देशन किया है किंतु वो बेचारे के अंदर में कुछ कामनाएं पड़ी थी। नारद जी उसकी भी प्रतीक्षा करते करोड़ों तपस्या की छह महीने में भगवान की प्राप्ति हुई जैसा कोई कठिन तपस्या नहीं किया किंतु थोड़ी सी कमी रह गई। वैष्णवों का सुनने कोई अनुगत्य नहीं है अन्नाभिलाषिता सुनने ये नहीं कहा कुछ कामनाएं वासनाएं थी किंतु नारायण की जो उपासना की और नारायण जी जैसे गुरु मिल गए इसलिए अपनी सकामता को पूर्ण करके उनकी मनोकामना पूर्ण करके फिर क्या किया थोड़ा सा भगवान की तरफ उनको ऐसा इसको भी बैग उनको दे दिया किंतु प्रेम रस नहीं दिया जो भागवत का है इसलिए उन्होंने कमी की। इसी तरह से और भी चरित्र चित्रकेतु महाराज इत्यादि की शपथ लाएंगे क्रमशः आगे की लोग चाहेंगे अभी शुभानंदचारी जी आपको बताएंगे। उसके पहले मैं अब पूज्य पाद महाराज जी से निवेदन करूंगा दो एक कुछ अपने उपदेश से श्रीमद भागवत के संबंध में बोल करके तब हम लोग अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे और जैसा वो प्रवचन होता है वैसा प्रतिदिन मैं इनसे निवेदन यदि करता हूं तीन चार दिन रहेंगे यहां उसमें प्रतिदिन यदि 10 मिनट समय दें तो सबका बड़ा भारी होता है ऐसा निवेदन करके अपना वक्तव्य समाप्त करें। विचार
समर्पया चक्षुर्मेनाथीण गुरवी गौरचंदा प्राचीन सदा कृष्ण। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय ये दर्शन करना ठाकुर जी, तब दर्शन ठीक हुआ। सनातन गोस्वामी को आदर से ही दर्शन करना है। साधु संत लोग जैसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी को वो अलग चीज है। हम लोगों को गुरु जी बोल रहे थे क्या, देखो ठाकुर को पास जाना है। क्यों तुम दर्शन करोगे, ये बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि दें इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। तुम्हारा ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आंख ठीक नहीं है, तुम्हारा जो आंख है ये जड़ है, पंचभूत है, इसलिए ठाकुर जी को पास जाना चाहिए। क्यों ठाकुर जी को शुभ दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगा इसीलिए जाना चाहिए। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, ऐसा है जो चीज अप्राकृत है प्राकृत दृष्टि से तो ऐसा दर्शन मिले, ऐसा प्रार्थना भी रखना है साथ ही साथ। ये सनातन गुरु सनातन गौड़िया मठ में आकर के पहले गुरु वैष्णव का अनुगत्य चाहिए, घोषणे के लिए पहले ठाकुर जी जो बैठे हैं उनको दर्शन करने के लिए भी गुरु वैष्णव का आश्रय करना है, अनुगत चाहिए, तब दर्शन मिलता है। आश्रय विग्रह जो विषय विग्रहों को परिचय करा दे, उनको कृपा बिना विषय विग्रहों को दर्शन और सेवा कुछ नहीं मिल सकती। सब कुछ गुरु वैष्णवों को दिया जाए, सर्वाराध्य भगवान को दिया जाए, सेवा वृत्तियां जितना है ये सब तो शिव वस्तु के ऊपर ही डालना है। मैं शिव है, शिव रूप में जो कुछ करना है, शिव को विधान के लिए जो कुछ करना है उसको भी भक्ति बोला जाए, लिखा है ऐसा। सेवा भजे देश वही धातु सेवायान परिवर्तता, अतः सेवा वही पड़ता भक्ति शब्द न भूय। अर्थ क्या होता है? सेवा और भक्ति दोनों एक ही चीज है। भजन, सेवा और भक्ति, आराधना उपासना एक ही बात है, ये सब सिनोनिम्स है। तो वही सेवा के लिए हम लोगों को कोशिश करना है, यही साधक और अधिकम है, कहीं फास्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। साधन जब तक चल रहा है तब तक मैं बद्ध जीव है, बद्ध भूमिका में जितना तक है मेरा अधिकार साधक रूप अधिकार, सिद्ध भूमिका में जब आ जाए तब भजन शब्द प्रयोग होता है। ये भी गोस्वामी लोग बतलाया सिखलाया सब। साधक साधिका रूप में साधन शब्द प्रयोग होगा और सिद्ध भूमिका में भजन शब्द प्रयोग हुआ। साधन भजन ये दो शब्द एक साथ उच्चारण किया जाता है, साधन भजन सब हो रहे, लेकिन साधन से भजन बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। ये दो शब्द भजन कब होता है? जब अनुभूति वास्तव अनुभूति जब आती है तब भजन शब्द प्रयोग किया, उसके पहले तक साधन शब्द ही प्रयोग करना। वास्तव रियलिटी जब तब भजन है, इसलिए साधक और हिद्ध ये दोनों एक ही नहीं है, इसमें कुछ अंतर होता है। भजन करना है किनका? भजन ये वस्तु का, भजन ये वस्तु क्या शास्त्र में लिखा है? हरि गुरु वैष्णव सेवा, गुरु वैष्णव हरि ये तीन लेकर के विचार है। बिना गुरु सेवा से हरि सेवा नहीं मिल सकती, बिना वैष्णव सेवा से परिवृत्ति नहीं हो सकती।
क्या
है तीनों को एक साथ लेना है, गुरु छोड़ करके भगवत सेवा नहीं हो सकता है, फिर विष्णु कृपा नहीं होने से परिवर्तन नहीं हो सकता है। दो जरूरी है दोनों का कृपा तब हरिशुभा हो सकता है, विभाजन हो सकता है। मूल लक्ष्य है हरि सेवा हरिभजन, अगर ऐसा बोला जाए मैं गुरु सेवा ही करूंगा और कुछ नहीं, तब तक प्रदर्शन ठीक नहीं होगा, गड़बड़ी होगा। यद्यपि गुरु ही वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, तथापि वैष्णव तत्व तो ही है, पड़ा हुआ है। तो गुरु वैष्णव का कृपा से भगवत भक्ति लाभ होती है, भगवत आराधना साधन भजन सब कुछ हो सकता है गुरु वैष्णव को कृपा से। यही बोल दिया शास्त्र में, इसे लिखा पार्वती जी शिव जी को पूछ रहा था इनका आराधना करना है, श्रेष्ठ आराधना कौन है, पार्वती जी पूछी थी, उत्तर क्या दिया शिव जी, आराधनानं सर्वेषां विष्णुराराधनं परम। अगर आराधना करोगे तब भगवान का आराधना करो, समझ लिया, लेकिन ये छोड़कर के और कुछ श्रेष्ठ है। तो शिव जी हंसने बैठा है, क्या देवी तस्मा परतरंग देवी तो दियानं समर्चनम, हे देवी पार्वती भगवान का सेवा, भगवान की सेवा जहां से ठीक ठीक रूप में वस्तु रूप में मिलता है उनको आराधना करना और बड़ा ही है। तो इंडिया एक विचार है, शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, भगवान भी ऐसा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हमारा सेवा से उपासना से हमारा जो गुरु वैष्णव है उनको उपासना अधिक है श्रेष्ठ है। फिर भक्त भी बोल रहे हैं मेरा परमपश्य भगवान है उनका ही आराधना करना श्रेष्ठ है, अब दोनों में तो गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी नहीं है अपना अपना विचार ठीक है। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त भक्तिमान बोलकर के एक बात है, भक्त के ऊपर भक्तिमान है भगवान, ये तो भगवान का विचार है। और भक्त क्या बोल रहे हैं, भगवान ही हमारा सब कुछ है, भगवान को छोड़ करके मैं कोई किसी को नहीं जानता। ये भक्त प्रेम की लड़ाई है, स्नेह ममता की। ये पहले था रहेगा, ये तत्वदर्शन है। भगवान भक्त को बढ़ाते हैं, फिर भक्त भी भगवान को बिना नहीं चल सकते। ये तो है, तभी विचार तो है कृष्ण भजन है। अगर भक्त नहीं है तो भजन कौन करेगा, कैसा होगा? तो इसीलिए ये दुनिया में भगवान को भी रहना पड़ेगा, भक्तों को भी रहना पड़ेगा। क्यों? भगवान और भक्ति नित्य चीज है, ये तत्व दर्शन है। ये तीनों को लेकर के चलना पड़ता है हम लोग। किसी को छोड़िए छोड़िए, सदन भजन नहीं, और भगवान को छोड़ना है तो किनका प्रश्न होगा? फिर गुरु वैष्णव को छोड़ना है तो कैसा उपासना हो सकती है? वो भी नहीं होगा। तो तीनों को ही रहना चाहिए। एक को अस्वीकार करने से तत्वदर्शन एकदम बदल जाएगा। उपासना रखना है तो ठीक ही है, तीनों को रखना है, वही विचार है। आज इतना तक यहां पर रहते कुछ पढ़ा दिया है।